بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریہ شروتا متروں، کارکرم کا شبھارمبھ پوتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیر کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
ये रेडियो तहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा प्रसारण आप शार्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज बुधवार है, तीर की 21, जिलेजा की 23 और जुलाई की 12 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे आशा की किरण और अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का कहना है कि युवा पीढ़ी को रचनात्मक प्रचार के केंद्र में होना चाहिए। ईरानी राष्ट्रपति बुधवार को 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रवाना हुए। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान और केन्या आर्थिक सहयोग में 10 गुना वृद्धि चाहते हैं। भारत के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बेंच आर्टिकल 370 को खत्म करने की याचिका पर सुनवाई शुरू करेगी। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई का कहना है कि देश के भावी मालिकों और निर्माताओं के रूप में युवा पीढ़ी को रचनात्मक प्रचार के केंद्र में होना चाहिए और उन्हें नई शैलियों और उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता के कार्यालय के मुताबिक इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने बुधवार को मुहर्रम महीने की पूर्व संध्या पर धार्मिक केंद्र के विद्वानों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, मुहर्रम के बारे में देश में शोध आधारित प्रचारिक गतिविधियों की आवश्यकता वर्तमान की गतिविधियों से कहीं अधिक है। उन्होंने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए उपदेश और प्रचार के आयामों और सूक्ष्मताओं के बारे में कहा, सही उपदेश के बिना ईश्वर का धर्म लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। धार्मिक केंद्रों में उपदेश और प्रचार की लंबे समय से चली आ रही परंपरा के महत्व की ओर इशारा करते हुए वरिष्ठ नेता ने कहा, इस्लामी गणतंत्र की स्थापना के बाद धार्मिक केंद्रों के प्रचार की जिम्मेदारी दोगुना हो गई है, क्योंकि धर्म के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना से अहंकारियों की इस्लाम के प्रति दुश्मनी बढ़ गई है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने लोगों के विश्वास को इस्लामी व्यवस्था की स्थिरता का आधार बताया और कहा, व्यवस्था की सुरक्षा और वास्तव में लोगों के विश्वास की सुरक्षा एक अनिवार्य कर्तव्य है, क्योंकि वर्तमान युग में ज्ञान, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत प्रचार के नए तरीके ईजाद हो गए हैं। इसलिए अक्ल कहती है कि दुश्मनों के प्रचार की खूनी तलवारों के मुकाबले में प्रचार को प्राथमिकता हासिल होनी चाहिए। आयतुल्लाह खामनेई ने इस्लामी व्यवस्था के विरोधी मोर्चे के बारे में, कि जो खुद को उदार लोकतांत्रिक कहता है, कहा, ईरानी राष्ट्र का विरोधी मोर्चा आज़ादी और स्वतंत्र सोच और हर उस व्यवस्था का विरोधी है जो साम्राज्यवादियों पर निर्भर नहीं है। इस मोर्चे के खिलाफ ईरानी राष्ट्र और इस्लामी व्यवस्था का प्रतिरोध और संघर्ष एक सभ्य और वैश्विक संघर्ष है।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी, केन्या, युगांडा और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपतियों के आधिकारिक निमंत्रण पर एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बुधवार की सुबह तेहरान से केन्या के लिए रवाना हुए। इरना की रिपोर्ट के अनुसार इस यात्रा में स्वास्थ्य व कृषि मंत्री, विदेश मंत्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपाध्यक्ष और उपमंत्रियों का एक समूह और राष्ट्रपति के कार्यकारी सलाहकार भी उनके साथ हैं। बुधवार की सुबह और तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर तीन अफ्रीकी देशों, केन्या, युगांडा और जिम्बाब्वे के लिए रवाना होने से पहले राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा था कि यह यात्रा केन्या, युगांडा और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपतियों के आधिकारिक निमंत्रण पर हो रही है। उनका कहना था कि इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद तेहरान के अफ्रीकी देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन समय गुजरने के साथ कुछ संबंध खत्म हो गए, विशेषकर पिछले दशकों के दौरान। लेकिन आज अफ्रीका में मौजूद विशाल धन और प्राकृतिक और खनिज संसाधनों के कारण और अफ्रीकी देशों में कई प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए इन क्षमताओं का आदान प्रदान हो सकता है।
ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने केनिया के साथ संबंधों के विस्तार के लिए मौजूद क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देश अपने आर्थिक सहयोग में 10 गुना वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। रईसी ने बुधवार को नैरोबी की यात्रा के दौरान ये टिप्पणी की, जहां उन्होंने अपने केनियाई समकक्ष विलियम रूटो के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने पेट्रोकेमिकल, कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के साथ साथ मत्स्य उद्योग और नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में केनिया के साथ सहयोग करने के लिए ईरान की तत्परता जताई। ईरानी राष्ट्रपति ने अपनी इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए कहा, इससे केनिया और पूर्वी अफ्रीका में ईरानी उत्पादों के लिए एक अच्छा बाजार तैयार हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान और केन्या के बीच संबंध उनकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए। राष्ट्रपति रईसी का कहना था कि जिस तरह ईरान फारस की खाड़ी और मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग करता है, उसी तरह केन्या के पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ संबंध है। दोनों देशों के बीच संबंध ऐसे संपर्कों के लिए आधार प्रदान करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद एरवानी ने कहा कि ईरान रासायनिक हथियारों के मुख्य पीड़ितों में रहा है। उनका कहना था कि ऐसे घातक हथियारों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। इरना के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद एरवानी ने मंगलवार को सीरिया में रासायनिक हथियारों के मामले पर सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि ईरान एक बार फिर किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में किसी के भी द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की निंदा करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन, मानवता के खिलाफ अपराध और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि ईरान रासायनिक हथियारों के मुख्य पीड़ितों में रहा है। 28 जून 1987 को ईरान के सरदस शहर पर एक विनाशकारी रासायनिक हमला हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित कई निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के राजदूत ने इस बात पर जोर दिया कि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कुछ पश्चिमी देश ईरान के खिलाफ इराक युद्ध के दौरान सद्दाम शासन के समर्थन और सहयोग के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मिलीभगत ने ईरानी जनता के खिलाफ रासायनिक हथियारों के व्यवस्थित उपयोग को सक्षम बनाया और एक ऐसी कार्रवाई है जिसे भुलाया नहीं जा सकता।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 370 को कमजोर कर जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 2 अगस्त से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई शुरू करेगा और सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर दैनिक आधार पर मामले की सुनवाई करेगा। संविधान पीठ ने यह भी कहा कि सभी पक्षों को 27 जुलाई तक सभी दस्तावेज, संकलन और लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करनी होंगी। पीठ में CJI के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि अधिवक्ता प्रसन्ना और कनु अग्रवाल सामान्य सुविधा संकलन तैयार करने के लिए नोडल वकील होंगे। इस बीच दो याचिकाकर्ताओं शाह फैसल और शहला रशीद ने अपनी याचिकाएं वापस लेने की अनुमति मांगी और अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया।
मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने से कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर और मिजोरम की सरकारों से अवैध प्रवासियों के बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक विवरण जुटाने के लिए कहा था। इस बायोमेट्रिक विवरण में आंखें, रेटिना व आईरिस और उंगलियों के निशान भी शामिल हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने बीते 22 जून के पत्र में भी राज्यों को 30 सितंबर तक यह अभ्यास पूरा करने की याद दिलाई थी। पिछले 28 अप्रैल को भल्ला ने म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले दोनों राज्यों में अवैध प्रवासियों से संबंधित जानकारी एकत्र करने पर एक बैठक की अध्यक्षता की थी। ज्ञात हो कि मणिपुर में इतई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा 3 मई को भड़क उठी थी, जिसमें 140 से अधिक लोग मारे गए हैं और 54,000 से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि जब मणिपुर जल रहा था तब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम कहाँ थी, जब एनआरसी की वजह से असम जल रहा था तब ये टीम कहाँ थी, कितने आयोग इन जगहों पर गए। उन्होंने कहा, पिछले 2 साल में करीब 156 टीमों ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है। ये फैक्ट फाइंडिंग टीमें नहीं बीजेपी उकसाउट कमेटियां हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव में इतने लोग मारे गए हैं। मैंने पुलिस को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मारे गए 19 लोगों के परिजनों को 2,00,000 रुपए का मुआवजा और स्पेशल होमगार्ड की नौकरी दी जाएगी और इसमें पार्टी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मारे गए लोगों में 10 TMC के कार्यकर्ता हैं।
सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में $2 अरब डिपॉजिट करके इस्लामाबाद को बड़े आर्थिक संकट से बाहर निकालने का प्रयास किया है। पहले से ही पाकिस्तान को $अरबों देने वाले सऊदी अरब ने उसके केंद्रीय बैंक में $2 अरब की बड़ी राशि जमा की है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने यह जानकारी सार्वजनिक की है, तो वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का इस मदद के लिए शुक्रिया अदा किया है। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि इस राशि के जमा करने से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। गौरतलब है कि IMF से बेलआउट पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था के लिए ये दूसरा बड़ा राहत पैकेज है। जून के आखिरी दिनों में पाकिस्तान को IMF से $3 अरब का राहत पैकेज मिलने पर सहमति हुई थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पाकिस्तान की स्थापना के समय से ही मजबूत संबंध हैं। 1970 के दशक के बाद ये संबंध और भी मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान के नेता अपने पहले दौर पर सऊदी जाते रहे हैं।
कुवैत ने स्वीडिश भाषा में पवित्र कुरान की 1,00,000 प्रतियां वितरित करने का निर्णय लिया है। कुवैती सरकार ने स्वीडन में स्वीडिश भाषा में पवित्र कुरान की 1,00,000 प्रतियां वितरित करने की योजना बनाई है। पवित्र कुरान के अपमान और स्टॉकहोम में इस पवित्र पुस्तक को जलाने की प्रतिक्रिया में कुवैती सरकार ने स्वीडन में पवित्र कुरान की 1,00,000 प्रतियां छापने और उन्हें देश में वितरित करने की योजना बनाई है। अल खब्स अखबार के मुताबिक कुवैत में पवित्र कुरान के प्रकाशन पर नजर रखने वाली संस्था ने मंगलवार को कहा कि इतनी संख्या में पवित्र कुरान को प्रकाशित करने का फैसला इस देश के प्रधानमंत्री अहमद नवाफ अल सबाह के आदेश पर लिया गया है।
मॉस्को का कहना है कि तुर्की एक गैर दोस्त देश में बदलता जा रहा है। रूसी फेडरेशन काउंसिल की रक्षा और सुरक्षा समिति के प्रमुख ने कहा है कि तुर्की की हालिया उत्तेजक और भड़काऊ कार्रवाइयों ने देश को एक गैर मित्र देश में बदल दिया है। रूसी फेडरेशन काउंसिल की रक्षा और सुरक्षा समिति के प्रमुख विक्टर बुंडारोव ने रूसी समाचार एजेंसी तास को बताया कि तुर्की अपने उत्तेजक फैसलों और कार्यों के कारण एक गैर दोस्त देश बनता जा रहा है। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने लुथियानिया के विनियस में बैठक के इतर दावा किया कि तुर्की के राष्ट्रपति ने इस सैन्य गठबंधन में स्वीडन की सदस्यता की मंजूरी का विरोध किया है। और इसी के साथ रेडियो थेरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستوں، میں ہوں روش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچا کے دینک کاریکرم میں۔ آج کے کاریکرم میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے ایرانی راشٹرپتی کی تین افریقی دیشوں کی مہتوپورن یاترا کے بارے میں،
اسلامی گڑتنتر ایران کے راشٹرپتی تین،
اور پھر بات کریں گے روس کے پڑوسی دیش لتھوانیا میں ہوئی ناٹو کی بیٹھک کے بارے میں،
لتھوانیا کی راجدھانی ولنیوس نے جو روس کے پڑوسیوں میں،
اور انت میں چلیں گے بھارت جہاں اس سمے راجدھانی دلی سے لے کر کئی راجیوں میں بھاری بارش کے کارن باڑھ کی استھتی پیدا ہو گئی ہے۔
نرنتر موسلادھار ورشا ہونے اور ہریانہ کے
تو دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلامی گڑراج ایران کے راشٹرپتی کی تین افریقی دیشوں کی یاترا کی۔ افریقہ کی یاترا پر ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی کا پہلا گنتو کینیا ہے، اس کے بعد وہ یوگانڈا اور زمبابوے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس سمبندھ میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اختر عباس۔
اسلامی گڑتنتر ایران کے راشٹرپتی تین افریقی دیشوں کینیا، یوگینڈا اور زمبابوے کے راشٹرپتیوں کے آدھیکاریک نمنترن پر ایک اچ استریہ پرتنیدھی منڈل کا نیتتو کرتے ہوئے بدھوار کو تہران سے کینیا کے لیے روانہ ہوئے۔ افریقہ کی یاترا پر ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی کا پہلا گنتویہ کینیا ہے، اس کے بعد وہ یوگینڈا اور زمبابوے کے لیے روانہ ہوں گے۔ 11 سال بعد ایران کے راشٹرپتی کی یہ پہلی افریقہ یاترا ہے۔ کینیا کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اسلامی گڑتنتر ایران کے راشٹرپتی نے مہر آباد ہوائی اڈے پر پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد اسلامی گڑتنتر ایران اور افریقی دیشوں کے بیچ سمبندھ وبھن کھیتروں میں اچھے رہے، لیکن سمے گزرنے کے ساتھ ہی کچھ سمبندھوں میں رکاوٹیں آئیں، وشیش کر پچھلے دشکوں کے دوران۔ لیکن آج افریقہ میں موجود وشال دھن اور پراکرتک و کھنج سنسادھنوں کے کارن اور افریقی دیشوں میں کئی پرتیبھاؤں کو دیکھتے ہوئے ان شمتاؤں کا آدان پردان ہو سکتا ہے۔ ایران کی ورتمان سرکار نے اگست 2021 میں ستا سنبھالی اور اس کے بعد سے اس نے ایک پریاس کیا جس کا مکھیہ ادیش دنیا میں اپیکشت شمتاؤں پر وشیش روپ سے دھیان دینا، خاص طور پر ٹرانس ویسٹرن شمتائیں جن پر امریکہ کے نیتتو والی پشچم کی نیتوں کا سب سے کم پربھاؤ رہا ہے۔ پڑوسی دیشوں یوریشیا، لیٹن امریکہ اور افریقہ میں یہ شمتائیں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے پرتیک کھیتر میں اپستھتی سے ودیشی نویش کو آکرشت کیا جا سکتا ہے اور اسے زمین پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ کینیا کو پوروی افریقہ کے مہتوپورن دیشوں میں سے ایک اور اس مہادویپ کا پرویش دوار مانا جاتا ہے، اسی لیے اس دیش کے ساتھ وبھن راجنیتک، آرتھک، سانسکرتک، ویگیانک اور تکنیکی کھیتروں میں سمبندھوں کا وستار افریقی مہادویپ کے پوروی کھیتر ایران کی اپستھتی بڑھانے کا ایک مہتوپورن کارک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران اور کینیا کے بیچ سمبندھوں کی شروعات 1971 سے ہوئی۔ ایتھوپیا اور صومالیہ کے بیچ شتروتا اور دشمنی تتھا صومالیائی ودروہیوں کو پہلوی شاسن کے سمرتھن کے بعد 1977 میں کینیا کے ساتھ ایران کے سمبندھ ٹوٹ گئے تھے۔ اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد 1982 میں نیروبی کے ساتھ تہران کے سمبندھ پھر سے شروع ہوئے۔ ایران کی اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد یدیپی ہم نے دونوں دیشوں کے ادھیکاریوں کا ایک دوسرے دیشوں کا دورہ دیکھا، لیکن ویوہار میں آرتھک سمبندھوں میں زیادہ اچھال نہیں آیا، جس کا مکھیہ کارن کینیا پر ایران کے ساتھ سمبندھوں کو وکست نہ کرنے کا دباؤ تھا۔ اس سمے کینیا پشچم کے راجنیتک سہیوگیوں کے جرگا کے طور پر کام کر رہا تھا۔ کینیا یوروپ اور ایشیا تک پہنچنے کے لیے ایران کی پریواہن لائنوں کا اپیوگ کرنے میں بھی روچی رکھتا ہے، جبکہ کینیا ایرانی اودیوگک وستوؤں کے لیے ایک اچھا بازار اور جل سنسادھن اور اپجاؤ بھومی ہونے کے کارن یہ کھیتر سے باہر کھیتی کے لیے ایران کے لکشوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ اسلامی گڑتنتر ایران کے راشٹرپتی کی کینیا یاترا کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کے لیے نئے سمجھوتوں اور انوبندھوں پر ایرانی اور کینیا ادھیکاریوں دوارا ہستاکشر کیے جائیں گے۔
اور اب چرچا کرتے ہیں ناٹو کی تازہ بیٹھک کے بارے میں۔ ترکیہ کے راشٹرپتی نے ناٹو میں سویڈن کی سدسیتا کو لے کر ایک نئی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکیہ کی یورپی سنگھ میں سدستا پر سویڈن کی ناٹو میں سدسیتا نربھر کرتی ہے۔ اس بارے میں ادھک جانکاری دے رہے ہیں برلن سے آئی آر آئی بی کے سنواددتا امیر شجائی، ہمارے ساتھی احمد عباس کی آواز میں۔
لتھوانیا کی راجدھانی ویلنیوس نے جو روس کے پڑوسیوں میں ہے نیٹو کی بیٹھک کی میزبانی کی۔
Today we will make...
بیٹھک کا سب سے اہم ایجنڈا اس سامرک الائنس میں نئے سدسیہ یعنی سویڈن کا اضافہ تھا۔ کسی بھی نئے سدسیہ کے اضافے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نیٹو کے سارے سدسیہ اس کے سمرتھن میں ہوں۔ ترکی کچھ گھنٹے پہلے تک ویروت کر رہا تھا۔ لتھوانیا کے دورے پر روانہ ہونے سے پہلے ترکی کے راشٹرپتی اردوغان نے کہا کہ پہلے یورپی سنگھ میں ترکی کو سدسیہ دی جائے۔ اردوغان نے کہا کہ پہلی یورپی سنگھ میں ترکیے کی سدستا کا راستہ کھولیے تاکہ ہم نیٹو میں سویڈن کے شامل ہونے کا راستہ کھولیں، مگر میڈیا نے بتایا کہ اردوغان نے اپنا وچار بدل دیا اور اپنی شرط سے وہ پوری طرح پیچھے ہٹ گئے۔ نیٹو پرمکھ نے کہا کہ ترکیے کے راشٹرپتی سے سارتھک بات چیت ہوئی۔ مجھے خوشی ہے کہ اردوغان نے نیٹو میں سویڈن کی سدستا کو سنسد کے پٹل پر رکھے جانے پر سہمتی جتا دی۔ نیٹو میں سویڈن کو شامل کیے جانے کے وشے کے علاوہ جسے ابھی ترکیے کی سنسد میں منظوری ملنا باقی ہے، نیٹو کے سدسیوں نے یوکرین کو سہایتا کا وعدہ بھی کیا ہے۔ جرمنی سب سے آگے ہے اور وہ یوکرین کی مدد میں سب سے آگے نظر آنے کی باقاعدہ کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے کئی فیصلے کیے ہیں۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ جرمنی یوکرین کی مدد کرنے میں آگے ہے۔ حالیہ مہینوں میں ہم نے یوکرین کی مدد میں وستار کیا ہے۔ اب یوکرین کو 700 ملین یورو کی نئی سہایتا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم آئندہ بھی یوکرین کا سمرتھن کریں گے۔ جرمنی لیوپرڈ ٹینک اور بختر بند گاڑیاں یوکرین کو دینے کے ساتھ ہی یوکرین کے بھیتر ہتھیار بنانے کے کارخانے لگانے کی بھی یوجنا پر کام کر رہا ہے۔ رائن میٹل کمپنی کے سی ای او نے سی این این سے بات
کی۔
ہمیں نیٹو کے دائرے میں انہیں ٹیکنالوجی دینی ہے۔ 2 سے 3 مہینے کے بھیتر ہم پشمی یوکرین میں پہلا کارخانہ کھول دیں گے۔ لتھوانیا کی بیٹھک میں جو پرستاؤ رکھے گئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ نیٹو فی الحال سنگھرش ویرام کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا ہے اور اس کا جنگ روکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یعنی جنگ کا یہ سلسلہ ابھی آگے بھی جاری رہے گا۔ برلین سے آئی آر آئی بی کے لیے امیر شجائی کی رپورٹ۔
اور اب رک کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت میں باڑھ اور بارش سے مچا ہاہاکار، اگلے 12 گھنٹے پڑ سکتے ہیں بھاری، موسم وبھاگ کی چیتاونی۔ راجدھانی دلی کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے۔ کیجریوال بولے یمنا کا جل استر بڑھنے کا کارن ہریانہ سے آنے والا پانی ہے۔ اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں دلی سے ہمارے سنواددتا شمشاد کاظمی۔
نرنتر موسلادھار ورشا ہونے اور ہریانہ کے ہتھنی کنڈ بیراج سے لگاتار لاکھوں کیوسک پانی چھوڑے جانے سے دلی میں یمنا یا جمنا ندی خطرے کے نشان کو پار کر کے کافی اوپر بہ رہی ہے اور کئی نچلے کھیتروں میں جمنا ندی کا پانی گھس گیا ہے۔ جمنا ندی کے نکٹ استھت تبتی مارکیٹ میں جمنا کا پانی کمر تک بھر گیا ہے، جس کے کارن اس کھیتر کے گھروں کو خالی کرا لیا گیا ہے اور دکانیں بند کر دی گئی ہیں۔ ایک پولیس کرمی نے بتایا،
جمنا کا جلستر بڑھ رہا ہے، ایسے یہاں سے رہنے والوں کو دکانداروں سے کہہ رہے ہیں بھائی جگہ کو خالی کر دیں، پانی اور بھی اور بڑھے گا تاکہ کوئی بھی آنی نہ ہو۔
کپڑوں کے لیے پرسدھ مونسٹری بازار میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور دکاندار اپنی سامگریاں دوسرے ستھانوں پر لے جا رہے ہیں۔
یہ تو پورا پریشان ہے، سب اپنے اپنے سامان جو ہے نکال کے اپنے اپنے سیفٹی جگہ پہ لے کے جا رہا ہے۔
اس کھیتر میں رہنے والے پترکار یوگیش دوبے نے بتایا کہ ان کے مکان میں بھی پانی پرویش کر چکا ہے۔
اندر ہمارا مکان ہوا ہے، ہم لوگ یہاں پہ 9 برسوں سے لگ بھگ رہ رہے ہیں،
ये लास्ट टाइम हमने 2009 में ऐसी बाढ़ देखी थी और 2011 में भी ऐसी ही बाढ़ आई थी। अन्य सालों में थोड़ा बहुत पानी बढ़ता था जमुना में, लेकिन यहाँ तक पानी नहीं आता था।
दुकानदारों का कहना है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
बाढ़ के बहुत भयंकर हालात हैं और हमें 5 से 7 साल हो गए दुकान खोले हुए, अभी तक पहली बार देखा है और कमर से ऊपर तक पानी है, भरा पड़ा है बुरी तरह।
जमुना नदी के पानी में निरंतर वृद्धि हो रही है और इस समय यह स्तर बढ़कर 207.55 मीटर तक पहुंच गया है, जिससे पिछले 45 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। जमुना नदी का पानी निचले क्षेत्रों में घुसने से बहुत से लोगों ने अपने घरेलू सामग्रियों के साथ या तो सरकार द्वारा बनाए गए शिविरों में पनाह ली है या वे सड़कों और फ्लाईओवरों के नीचे रहने पर विवश हैं। सरकार द्वारा यद्यपि बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु फिलहाल ये सहायता नाकाफी दिखाई दे रही है। उत्तरी भारत में हालिया मूसलाधार बारिश होने और भूस्खलन में जहां बहुत से आवासीय भवनों और घरों और वाहनों को भारी क्षति पहुंची, वहीं इन दुर्घटनाओं में अब तक बहुत से लोग हताहत भी हुए हैं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का ये दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम आशा की किरण। आशा की किरण।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि महान ईश्वर से बेहतर इंसान की क्षमता और अक्षमता को कोई नहीं जानता, इसलिए उसने समाज और पूरी दुनिया के मार्गदर्शन के लिए 1,24,000 पैगंबरों और 12 इमामों को भेजा ताकि वे लेश मात्र त्रुटि के बिना इंसानों का सही मार्गदर्शन करें। महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम के अंतिम उत्तराधिकारी हैं और वो भी इस समय पर्दे गैब में हैं। इस प्रकार की हालत और स्थिति में कोई ऐसा हो जो लोगों का मार्गदर्शन करे, अगर कोई लोगों का सही मार्गदर्शन न करे तो लोग गुमराह हो जाएंगे, जबकि महान ईश्वर ने सबसे पहले मार्गदर्शक को पैदा किया, उसके बाद दूसरे इंसानों को। यानी महान ईश्वर ने लोगों को पैदा करने से पहले उनके मार्गदर्शक यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। तो जो ईश्वर इंसानों का इतना ध्यान रखता है, वो इंसानों को पैदा करने के बाद उन्हें उनकी हाल पर मार्गदर्शक के बिना कैसे छोड़ देगा।
इस आधार पर महान ईश्वर ने लोगों को गुमराही से बचाने के लिए 1,24,000 पैगम्बर और 12 इमाम भेजे हैं ताकि वे लोगों को लोक परलोक में कल्याण का रास्ता दिखा सकें, और जिस समाज में न्याय और शांति नहीं होगी वह समाज कभी भी कल्याण का रास्ता तय नहीं कर सकता। आज समाज को लोक परलोक में कल्याण का रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी महामुक्तिदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की है। चूंकि इमाम इस समय लोगों की नजरों से ओझल हैं, तो यह जिम्मेदारी उनके आम प्रतिनिधि अंजाम दे रहे हैं।
यहाँ एक बिंदु का उल्लेख जरूरी है और वो ये है कि इस्लाम धर्म के दुश्मन हमेशा थे और आज भी हैं। इस्लाम के दुश्मन इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं ले रहे हैं। इस्लाम के दुश्मनों ने जब से इस बात को समझ लिया है कि जब तक इमाम जमान अलैहिस्सलाम के आम प्रतिनिधि उनके दायित्वों का निर्वाह करते रहेंगे और लोगों में उन्हें प्रतिष्ठा के दृश्य से देखा जाता रहेगा, तब तक इस्लाम और मुसलमानों को कुठाराघात नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इस समय उनके षड्यंत्रों और प्रयासों के एक महत्वपूर्ण भाग का संबंध महामुक्तिदाता के आम प्रतिनिधियों से है।
काफिरों, इस्लाम के दुश्मनों ने इस्लाम के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए जो काम किया है उनमें से एक पैगंबर इस्लाम का अपमान था। काफिर ये चाहते थे कि लोगों में पैगंबर इस्लाम की प्रतिष्ठा को कम व खत्म कर दे ताकि इस्लाम के प्रचार प्रसार को रोका जा सके। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र रचे, पर अंत में उनके समस्त षड्यंत्रों पर पानी फिर गया।
आशा की किरण। मानवता के मोक्षदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर सटीक बहस पर आधारित कार्यक्रम आशा की किरण। हर हफ्ते बुधवार को।
इस्लाम के दुश्मन उनमें सर्वोपरि अमेरिका, पश्चिमी व यूरोपीय देश और उनके पिछलग्गू इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने और उनकी छवि को बिगाड़कर पेश करने में संकोच से काम नहीं ले रहे हैं। इस्लाम के दुश्मन ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इस्लाम के प्रचार प्रसार को रोका जा सके। वे इस्लाम को अपने अवैध हितों के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना और सोचना है कि जब इस्लाम नहीं रहेगा तब वे बड़े आसानी से अपने अवैध हितों तक पहुंच और उसे साध सकते हैं।
महामुक्तिदाता के सच्चे प्रतीक्षक की एक जिम्मेदारी ये है कि वह इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों और उनकी चालों को समझे और उन्हें विफल बनाने के रास्तों को बयान करे। अगर कोई इंसान नमाज पढ़ता है और दूसरी उपासनाएं भी अंजाम देता है परंतु वह न तो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों को पहचानता है न ही उसके विषैले प्रचारों को प्रभावहीन बनाने की कोशिश करता है तो वह महामुक्तिदाता का सच्चा प्रतीक्षक नहीं हो सकता। महामुक्तिदाता के सच्चे प्रतीक्षक को स्वयं को उनका सिपाही समझना चाहिए और उनके जल्द से जल्द जुहूर के मार्ग में मौजूद रुकावटों को दूर करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए।
दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि महामुक्तिदाता के आने की शुभ सूचना हर धर्म यहाँ तक के गैर ईश्वरी धर्मों में भी दी गई है। अंतर केवल इतना है कि कुछ धर्मों में महामुक्तिदाता के नाम और उनकी हस्ती को लेकर मतभेद है, परंतु समस्त धर्म इस बात पर एक मत है कि महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे और पूरी दुनिया को न्याय और शांति से उस तरह से भर देंगे जिस तरह वो अत्याचार से भरी होगी।
इस्लाम के दुश्मनों की एक चाल यह है कि लोगों में महामुक्तिदाता के बारे में जो आस्था व धारणा मौजूद है उसे खत्म या कमजोर करें। इसके लिए कुछ समय में या कुछ वर्षों में कुछ लोग झूठ में महामुक्तिदाता होने का दावा करते हैं। जो इंसान स्वयं को महामुक्तिदाता का सच्चा प्रतीक्षक बनाना चाहते हैं उसे चाहिए कि इस प्रकार के झूठे दावेदारों के चेहरों पर पड़ी नकाब को हटाए और लोगों को पाखंडी व्यक्तियों के झूठे दावों से सचेत करे। जो लोग झूठ में महामुक्तिदाता होने का नावा करते हैं उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो ख्याति अर्जित करने या धन संचित करने के लिए इस प्रकार का दावा करते हैं और कुछ साधारण और भोले भाले लोग इस प्रकार का दावा करने वाले लोगों के छलावे में आ जाते हैं।
महामुक्तिदाता के पैदा हो जाने के बाद से अब तक कम से कम 50 लोग महामुक्तिदाता होने का झूठा दावा कर चुके हैं और इनमें से कुछ दावेदार ऐसे भी हैं जिनका संबंध सुन्नी समुदाय से है। इस संबंध में एक रोचक बिंदु यह है कि कुछ अमवी और विशेषकर अब्बासी खलीफाओं ने स्वयं को महदी के नाम से बुलाया ताकि इस पवित्र व महान नाम से अधिक लाभ उठाएं और लोगों का विश्वास जीत सकें। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने एक अमवी शासक अब्दुल अजीज को महदी के नाम से बुलाया। कुछ अब्बासी शासकों ने भी महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में जो रिवायतें हैं उसकी व्याख्या अपनी इच्छानुसार और अपने हित में किया। यही नहीं, अब्बासी शासकों ने अपने हित में कुछ रिवायतें भी गढ़वा कर लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि वे ही समय के इमाम महदी یعنی مہا مکتی داتا ہیں۔ یہاں تک کہ عباسی خلیفہ منصور نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا اور کہتا تھا کہ وہی انتیم سمے میں پرکٹ ہونے والا مکتی داتا ہے۔
دوسری اور بنی امیہ کے خلاف ہونے والے کچھ پرتیرودھوں و آندولنوں کے نیتاؤں نے سوئم کو مہا مکتی داتا ہونے کا دعویٰ کیا، جن میں سب سے مکھی محمد بن عبداللہ تھا اور نفس زکیہ کے نام سے وہ مشہور تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کا سمرتھن بھی کیا، مگر جب عباسی شاسکوں نے ستہ کی باگ ڈور سنبھالی تو انہوں نے اسے اس کے پریجنوں اور سمرتھکوں کو گرفتار کر لیا، جس میں سے کچھ کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور شیش کو جیل میں ڈال دیا۔
اسماعیلیہ وہ سمپردائے ہے جس نے مہا مکتی داتا کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے پرچار پرسار میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے۔ کچھ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو مہا مکتی داتا سمجھتے تھے، جبکہ اسماعیل کا ندھن سوئم امام جعفر صادق علیہ السلام کے جیون میں ہی ہو چکا تھا، کنتو کچھ لوگوں اور ایک سموہ کا ماننا تھا کہ امام زمان علیہ السلام غائب اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، پرنتو انت میں اس نے عبداللہ مہدی کو مہا مکتی داتا مان لیا اور کہا کہ یہ وہی امام ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔
اتری افریقہ بھی ان شیتروں میں سے ہے جہاں جھوٹے مہا مکتی داتا کا دعویٰ کرنے والے پرکٹ ہوئے۔ عبداللہ مہدی ان میں سب سے مکھیہ تھا اور اس نے فاطمیہ نام کی بڑے سلسلے کی بنیاد رکھی۔ اس نے اس سمے مہا مکتی داتا ہونے کا دعویٰ کر دیا جب اسماعیلی سمپردائے کے پرچارکوں نے اس کے مورکو میں پرویش کی بھومی پرشست کر دی تھی۔ عبیداللہ نے اپنے جھوٹے دعوے کو مضبوط بنانے کے لیے مہدیہ نام کے شہر کی بنیاد بھی رکھی تھی، جبکہ اس کے اترادھیکاریوں نے فاطمیہ نام کی خلافت کی بنیاد رکھی تھی اور انہوں نے سموچے اتری افریقہ اور شام پر نینترن کر لیا اور لگ بھگ 280 سال تک انہوں نے شاسن کیا۔ مگر جب یہ سرکار اپنی کمزوری کے دور سے گزر رہی تھی کہ 515 ہجری قمری برابر 121 عیسوی میں محمد بن تمرت نام کے ایک انیہ ویکتی نے مہا مکتی داتا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور مہدن نام کی سرکار کے گٹھن کی بھومی پرشست کر دی۔ وہ اپنے جھوٹے دعوے میں اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اس نے آدیش دیا کہ اس کے جھنڈے پر مہدی خلیفہ خدا لکھ دیا جائے۔ بہرحال اس کے اترادھیکاریوں نے اتری افریقہ اور اسپین کے ان لوگوں و شیتروں پر قبضہ کر لیا جہاں مسلمان رہتے تھے اور لگ بھگ 150 ورشوں تک شاسن کیا۔
اتری افریقہ میں مہا مکتی داتا ہونے کا دعویٰ کرنے والا ایک انیہ ویکتی احمد بن عبداللہ ہے جو ابن محلی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ صوفی پنت کا انویائی تھا اور مورکو میں بہت سے لوگ اس کے سمرتھک بن گئے تھے۔ ابن محلی نے لگ بھگ 1000 ہجری میں سوئم کو مہا مکتی داتا کہا اور قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ وہ پیغمبر کی پرمپرا پر عمل کریں۔ بعد میں اس نے دھیرے دھیرے مورکو کے نگروں پر قبضہ کرنا آرمبھ کر دیا اور جب قبضہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد اس نے صوفی پنت کو چھوڑ دیا اور 14 ورشوں تک اس دیش کا شاسک رہا۔
انتتہ ایک انیہ صوفی مورکو کے پورو شاسک کے اکسانے پر 1022 ہجری قمری میں اس سے جنگ کی۔ یدپی اس جنگ میں ابن محلی ہار گیا اور مارا گیا، پرنتو اس کے انویائیوں اور سمرتھکوں کا ماننا تھا کہ وہ غائب ہو گیا ہے۔
محمد احمد بن عبداللہ نام کا ایک ویکتی ہے جو اتری افریقہ میں مہا مکتی داتا کا دعویٰ کرنے والا ہے اور وہ مہدی سودانی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے سمے میں سوڈان کا سنچلن عثمانی سامراج اور مصری سیناؤں کے مادھیم سے ہوتا تھا اور نردھنتا بھرشٹاچار اور بھید بھاؤ سوڈان میں بہت پرچلت تھا۔ اس استھتی میں مہدی سودانی نے ادھیکارکاریوں کے خلاف آندولن کیا اور 1289 ہجری قمری ارتھات 1881 عیسوی میں خود کو مہدی کہا۔ वो अजीब गरीब दावे करता था और कहता था कि जागने की हालत में वो पैगम्बर इस्लाम की सेवा में गया था और उनसे कुछ संदेश लाया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वे लोग काफिर हैं जो उसके महदी होने को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
मेहदी सुडानी इसी प्रकार उन सपनों और जागने की हालत में उन आवाजों से बात करने का दावा करता था जिनमें उनके कथनानुसार मेहदी होने पर बल दिया गया होता था। बहरहाल वह सुडान के पीड़ित व अत्याचारग्रस्त लोगों के समर्थन से तुर्की की और मिस्री सेनाओं को हरा दिया और सुडान पर नियंत्रण कर लिया। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम आजकल।
आजकल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मरियम मेहर दादी और अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज हम अवैध ज़ायोनी शासन की स्थापना में ब्रिटेन की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। फिलिस्तीन के इतिहास की समीक्षा करते हुए पिछले कार्यक्रम में हमने बेलफोर घोषणा पत्र का उल्लेख किया था। अब तक हमने फिलिस्तीन के आरंभिक इतिहास से लेकर ओटोमन एम्पायर और उस्मानी साम्राज्य के दौरान फिलिस्तीन की स्थिति की समीक्षा की थी। हमने ये भी बताया था कि बहुत बड़े भूभाग में फैले उस्मानी साम्राज्य को गिराने के लिए ब्रिटेन ने कई स्तर पर अपनी गतिविधियां जारी रखी थी। ब्रिटेन की षड्यंत्रकारी चालों से उस्मानी साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया।
इसी दौरान कुछ यहूदियों ने यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश बनाए जाने की योजना बनाई। ब्रिटेन ने उनका खुलकर और छिपकर दोनों रूपों में समर्थन जारी रखा। इस प्रकार से सन 1880 में केंद्रीय यूरोप में यहूदियों का आंदोलन अस्तित्व में आया। 1880 में जो यहूदी आंदोलन अस्तित्व में आया, उसका मुख्य लक्ष्य एक यहूदी सरकार का गठन करना था। इस आंदोलन में ब्रिटेन सहित यूरोपीय देशों का समर्थन हासिल था। इस आंदोलन ने 1882 से लेकर 1897 तक पूरी दुनिया के यहूदियों को फिलिस्तीन में लाकर एकत्रित करने की योजना पर काम किया, जिसमें उनको पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई।
इसी दौरान थियोडोर हर्ज़ल नामक एक पत्रकार ने 1895 में फ्रांस में एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था यहूदी सरकार। इस किताब के माध्यम से हर्ज़ल ने यहूदियों से एक अलग राष्ट्र की स्थापना पर बल दिया। थियोडोर हर्ज़ल बुडापेस्ट का रहने वाला था, जो सामान्यतः पेरिस जाया करता था। सन 1897 में थियोडोर हर्ज़ल ने ज़ायोनियों की मूल विचारधारा पर आधारित डी वेल्ट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसी साल ज़ायोनी नेताओं ने स्विट्ज़रलैंड के बाल नगर में एक बैठक का आयोजन किया और अंतर्राष्ट्रीय ज़ायोनी संगठन की नींव डाली।
दोस्तों, इस बैठक के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर हम बाल बैठक के परिणाम को एक वाक्य में कहें तो ये है कि हमने इस बैठक में यहूदी सरकार के गठन की भूमिका तैयार की। ज़ायोनियों के आंदोलन के आरंभ में ही यहूदियों ने धोखे की नीति अपनाई। अपने पहले सम्मेलन में उन्होंने देश शब्द का प्रयोग न करके उसके स्थान पर केंद्र शब्द का प्रयोग किया। हालांकि उनका मुख्य उद्देश्य यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाना था, किंतु इसके लिए वे देश के स्थान पर केंद्र का शब्द इस डर से कर रहे थे कि ऐसा करने से फिलिस्तीनियों की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं और उनकी योजना विफल हो सकती है।
बाद में होने वाले परिवर्तनों से साफ पता चल गया कि ज़ायोनियों का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन के भीतर अपने लिए एक सरकार का गठन करना था।
पहले विश्व युद्ध में उस्मानी साम्राज्य ने जर्मनी का समर्थन किया था। इस विश्व युद्ध में घटकों को पराजय हुई जिनमें उस्मानी शासन और जर्मनी भी शामिल थे। बाद में सन 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस की सरकार के ओटोमन अम्पायर या उस्मानी शासन के अधीन क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर एक गुप्त समझौता हुआ। इस समझौते को साइक्स पिकॉट समझौते के नाम से जाना जाता है।
इस समझौते में ब्रिटेन की ओर से सर मार्क साइक्स ने और फ्रांस की ओर से जॉर्ज पिकॉट ने भाग लिया था, इसलिए इसको साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसी बीच ब्रिटेन की सरकार ने शरीफ हसन से वार्ता की। शरीफ हसन को उस्मानी शासन ने हिजाज अर्थात वर्तमान सऊदी अरब का शासक नियुक्त कर रखा था। ब्रिटेन की सरकार ने शरीफ हसन को आश्वस्त किया था कि वो उनकी बात को माने और अगर उसको उस्मानी साम्राज्य की ओर से कोई खतरा पैदा होता है तो ब्रिटेन ऐसे में उसका साथ देगा और वो तुर्कों के मुकाबले में अरबों को अकेला नहीं छोड़ेगा।
दोस्तों, इस बीच रूस को भी साइक्स पिकॉट समझौते से अवगत करवा दिया गया था। रूस ने कुछ विशेषताएं हासिल करके समझौते का समर्थन किया। इस प्रकार से 16 मई सन 1916 को ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ जिसको साइक्स पिकॉट का पूरक कहा जाता है। इस समझौते के बाद से उस्मानी साम्राज्य के नियंत्रण वाले क्षेत्रों का बंटवारा तीन देशों के बीच हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। इसमें उस्मानी साम्राज्य का जो हिस्सा ब्रिटेन के हाथ लग गया था वो इराक, पूरा दक्षिणी क्षेत्र, पूरा बगदाद नगर और फिलिस्तीन में स्थित हैफा और अक्का बंदरगाहें।
यहाँ पर इस बात का उल्लेख जरूरी है कि उस्मानी साम्राज्य के जो क्षेत्र ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच बांटे गए उनमें सबसे जटिल मुद्दा फिलिस्तीन का था। फिलिस्तीन को सारे ही पक्ष अपने लिए पसंद करते थे। लंबी वार्ता के बाद ये तय हो गया कि ब्रिटेन को फिलिस्तीन में स्थित हैफा तथा अक्का बंदरगाहें दे दी जाएं। इसी के साथ ये भी तय पाया कि फिलिस्तीन के बाकी भाग का संचालन अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन में दे दिया जाए। तीनों में से किसी भी देश के पास फिलिस्तीन के बाकी बचे हिस्से के अंतर्राष्ट्रीय संचालन के बारे में कोई योजना नहीं थी, इसलिए इस बात पर सहमति बनी कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इस पर बात की जाएगी।
जब साइक्स पिकॉट समझौते के अंतर्गत फिलिस्तीन के बारे में फैसला किया गया तो समय ये बात स्पष्ट नहीं कही गई थी कि यहाँ पर यहूदियों को लाकर बसाया जाएगा। हालांकि इस बारे में यहूदी नेताओं और ब्रिटेन की सरकार के बीच विचार विमर्श होता रहा था और ब्रिटेन उनका खुलकर समर्थन भी करता था। ब्रिटेन में जब सरकार बदली और लैलॉर्ड जॉर्ज ने सत्ता संभाली तो फिलिस्तीन के बारे में ब्रिटेन की सरकार की ओर से अधिक दिलचस्पी दिखाई जाने लगी। दूसरी ओर फ्रांस में कैले केमिस ने 1917 में सत्ता संभाली। वो फ्रांस की औपनिवेशिक एवं विस्तारवादी नीतियों का विरोध करता था। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की ओर से मध्य पूर्व में विस्तारवादी नीति काफी समय तक सीमित हो गई। फिलिस्तीन के बारे में इस देश की पहले जैसी संवेदनशीलता अब बाकी नहीं बची थी।
इसी बीच 1917 के वसंत के अंत में ज़ायोनी नेताओं ने खुलकर एक यहूदी सरकार के गठन की बात सार्वजनिक रूप में कहनी शुरू कर दी। उन्होंने एक आवेदन भेजकर ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री आर्थर जेम्स बलफोर से मांग कर डाली कि ब्रिटेन की सरकार उनका साथ दे। इस प्रकार से फिलिस्तीन में एक यहूदी सरकार के गठन के बारे में ब्रिटेन की सरकार ने औपचारिक रूप से उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। उधर अमेरिका में रहने वाले यहूदियों से भी संपर्क बनाकर उनके साथ विचार विमर्श आरंभ हो गया।
इस संबंध में एक मसौदा तैयार किया गया जिसको ब्रिटेन की सरकार ने मान लिया। 2 नवंबर 1917 को ज़ायोनियों के एक पूंजीपति तथा ज़ायोनी नेता वॉल्टर राथ्सचाइल्ड ने इसकी सार्वजनिक घोषणा कर दी। इस प्रकार से ब्रिटेन की सरकार ने आधिकारिक रूप में फिलिस्तीन के भीतर एक यहूदी सरकार के गठन की बात स्वीकार कर ली और कहा कि इस बारे में वो अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगी। हालांकि ब्रिटेन ने हमेशा ही ये दर्शाने का प्रयास किया कि उसने यहूदियों के प्रति अपनी सहानुभूति के कारण फिलिस्तीन में उनकी सरकार के गठन के प्रस्ताव को मान्यता दी, किंतु ये एक वास्तविकता है कि उसी समय से ब्रिटेन के कई राजनेता इस बात को मानने लगे थे कि स्वेज नहर के निकट फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों की एक मित्र सरकार के होने से लंदन को कई स्ट्रेटेजिक लाभ होंगे।
यही कारण है कि बात पूरे विश्वास के साथ कही जा सकती है कि ब्रिटेन की ओर से बिल्फोर समझौता का समर्थन वास्तव में एक यहूदी सरकार की आड़ में मध्य पूर्व में लंदन के हितों की रक्षा के लिए है। मध्य पूर्व में ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों के लिए फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक यहूदी मित्र सरकार की मौजूदगी इसलिए थी ताकि वो उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक सहयोगी की भूमिका निभाए। जब एक ऐसी सरकार क्षेत्र में बन जाएगी तो उसको स्वेज नहर से ही लाभ उठाए और भारत की ओर जाने वाले समुद्री मार्ग से भी लाभान्वित करती रहे। मिस्र में स्वेज नहर की उपस्थिति के कारण ब्रिटेन इस रास्ते से अपनी उपनिवेशी नीतियों को आगे बढ़ा सकता था।
ऐसे में फिलिस्तीन में यहूदी सरकार का गठन यहूदियों से ब्रिटेन के किसी प्रेम का या वहां के तत्कालीन विदेश मंत्री के निजी स्वार्थ का मुद्दा नहीं बल्कि मध्य पूर्व में उसके हितों को सुरक्षित करने के लिए एक चौकीदार की जरूरत थी। बेलफोर समझौता 11 अगस्त सन 1919 को पेरिस में पूरा हुआ और 19 सितंबर को उसे ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय में भेज दिया गया। बाद में घटकों की बैठक में इस पर सहमति बनी जिस पर बेलफोर समझौते की घोषणा की गई। उस समय उसने इस्लामी जगत के बारे में कोई चिंता नहीं दिखाई। बहुत से लोग तो ये सोच रहे थे कि समय गुजरने के बाद लोग इसको भूल जाएंगे, किंतु इतिहास ने हमें कुछ और ही दिखाया। ये समझौता बाद में सबसे विवादित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के रूप में सामने आया जिसने इस्लामी जगत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
श्रोताओं, ये सभा आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे थे। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।